ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है सबका भला करना। पहले अपना भला करो, फिर दूसरों का भला करने के लिए सेवा करो। मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है सबका भला करना। यह संगम का जीवन जो बच्चों को मिला है, वह मिला है सबका भला करने के लिए, क्योंकि दुनिया में सबका भला करने वाले कोई है नहीं। तो अभी कौन करेगा? बाप के बच्चों को ही करना पड़ेगा। आत्मा आत्मा रूप में भाई भाई, इस रूप में उनका भी तो भला करना पड़ेगा। वो भी भटक रहे हैं जैसे तुम भटक रहे थे, वैसे वो भी भटक रहे हैं। जब तुम भटक रहे थे तो तुम्हें लग रहा था कि कोई दया करे, करुणा करे, हमें राह दिखाए, और तुम्हें राह मिल गई। उसी प्रकार उन्हें भी लगता है कि उन्हें कोई राह दिखाए, वो भी राह की राह देख रहे हैं कि सच्ची राह कब मिलेगी जिस पर हम चलेंगे, हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। सारी दुनिया राह देख रही है। अगर राह दिखाने वाले तैयार हैं तो राही बहुत आएंगे। पर बाबा कहते हैं राह दिखाने वाले तैयार होने चाहिए। राही तो बहुत हैं जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाए, किस दिशा में जाए, क्या करें। सब कुछ है पर दुखी हैं, परेशान हैं, जन्मों जन्मों के विकर्म हैं, ऊपर से घोर कलयुग, सुख शांति तो ऐसे ही नहीं मिल सकती, क्योंकि विकर्म बहुत हैं। तो बच्चों को अभी उन पर रहम करना चाहिए, उन्हें राह दिखानी चाहिए। बच्चे सोचते होंगे कि हम तो तैयार हैं राह दिखाने के लिए, पर कोई आते नहीं, तुम तैयार नहीं हो। जब तुम तैयार हो जाओगे तो भीड़ लग जाएगी, कोई आते नहीं है। इसी से सिद्ध होता है कि तुम तैयार नहीं हो। समझ की बात है। सेवा देने वाला जब तैयार होता है तो सेवा लेने वालों की भीड़ लग जाती है। बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता हो कि पता नहीं कैसे लगेगी भीड़, मैं लगवा दूंगा, तुम चिंता मत करो, पर तुम्हारी तो तैयारी हो। किसी डॉक्टर ने डॉक्टरी कंप्लीट नहीं की तो उसके पास पेशेंट कहाँ से आएंगे? पहले डॉक्टरी तो कंप्लीट करें, फिर भीड़ लग जाएगी। बीमार तो बहुत है दुनिया में। इसलिए बच्चे, तुम्हारा यह जन्म मिला है संगम का, किस लिए? नौकरी धंधा करने के लिए, घर परिवार संभालने के लिए, मौज करने के लिए, बाहरी नहीं, मिला है सबका भला करने के लिए। तो जिसके लिए तुम्हें यह जीवन मिला है वह तुम करो। बाकी बातें करने के लिए दुनिया है, तुम्हारा काम नहीं है बाकी बातें करना। तुम्हारा काम है दुनिया का भला करना। ध्यान दो इस बात पर। तुम्हारा धंधा है सबका भला करना, पहले अपना भला करो। उसमें भी बाबा कहते हैं यह ज्ञान पहले तुम धारण करो, पहले खुद का भला करो। इस ज्ञान से खुद का भला करना माना क्या? इस ज्ञान को संपूर्ण रीति धारण करना माना खुद का भला करना। बच्चे तुम आत्मा हो, आत्मिक स्थिति में आ जाओ, बाप की याद में बैठो, दुनिया की झरमुई झगमुई छोड़ दो, संसार से आप बुद्धि को निवृत्त कर लो और बाबा में लगा दो। यह है खुद का भला करना, पहले अपना भला करो। देखिए आगे चल के बहुत बच्चे आएंगे, बहुत लोग आएंगे, उनके पास बहुत समय होगा, बहुत धन होगा, बहुत व्यवस्था होगी, लेकिन बाप कहेगा समय समाप्त हुआ। खुद का भला करने का और दूसरों का भला करने का भी समय समाप्त हुआ, अभी कुछ नहीं कर सकते। अभी क्या हो सकता है? कुछ नहीं, समय पूरा हुआ, फिर पछताएंगे, वो कहेंगे एक मिनट तो दे दो, बस एक मिनट, शायद एक मिनट में हम बहुत कुछ पा सकें। ड्रामा कहेगा समय पूरा हुआ। स्कूल में होता है ना, एग्जाम के समय घंटी बज जाती है समय समाप्त हुआ, और उसी समय किसी बच्चे को कहीं से कॉपी करके आंसर मिल जाता है। बच्चा टीचर को कहता है बस एक मिनट दीजिए मैं पास हो जाऊंगा, बस एक फिल इन द ब्लैंक्स लिखता हूँ, एक मैच द फॉलोइंग लिखता हूँ, एक ट्रू और फॉल्स लिखता हूँ, बस एक एक प्रश्न के जवाब से, एक उत्तर से मैं पास हो जाऊंगा। टीचर कहता है टाइम पूरा हुआ है, तुम पास होंगे या ना पास होंगे उससे हमें कोई लेना देना नहीं, पेपर दे दो, जमा करो। वही बात है, ड्रामा कहेगा टाइम पूरा हुआ। बाप जैसे अभी कहता है बच्चों को कि संसार से निवृत्ति लो, माया ने पकड़ के रखा है, निवृत्ति लेने नहीं देती, नौकरी धंधा घर परिवार संसार, और अंत समय में क्या होगा? उनका पूरा परिवार भी कहेगा कि आप निवृत्ति लो, वो खुद भी कहेंगे हम निवृत्ति लेते हैं। ड्रामा कहेगा समय समाप्त हुआ, तुम्हारी निवृत्ति किसी काम की नहीं, दो कौड़ी की नहीं, कोई उपयोग नहीं उस निवृत्ति का, अभी संभालो अपना संसार, नौकरी धंधा घर परिवार, मुबारक हो, समय पर जागो। श्रेष्ठ वही है, महान वही है जो समय पर जागते हैं। समय पर अगर नहीं जाग सकते तो तुम्हारी महानता किसी काम की नहीं है, फिर तुम्हारे पास कितना भी बड़ा उत्तर हो, जिस उत्तर से तुम्हें 100 out of 100 मिलने वाले हो फिर भी समय समाप्त हुआ, वो उत्तर किसी काम का नहीं है, वो समय किसी काम का नहीं है, वो निवृत्ति किसी काम की नहीं है, समय पर होना चाहिए। कभी कभी मुरली में बाबा कहता है, कुछ दिन पहले कहा ना 60 साल के बाद निवृत्ति लेनी चाहिए, राम राम करो संसार को, देखो भी नहीं, पर माया करने नहीं देगी, माया है वो, तुमने उसे यूज किया है, अभी वो तुम्हें यूज करेगी। ध्यान में रखना। इसलिए ताकत लगानी पड़ती है उसके बाद संसार से निवृत्ति लेने के लिए। कोई बच्चे होते हैं नौकरी धंधे में निवृत्ति लेते हैं और संसार में फंस जाते हैं। इससे दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है कि नौकरी धंधे से निवृत्ति लेने के बाद अब संसार में फंस गए। संसार से निकलने के लिए आपने नौकरी धंधा किया और वापस नौकरी धंधा छोड़ के संसार में फंस गए। बहुत बुरी हालत है इनकी। इनका क्या होगा पता नहीं। बाबा कहते हैं बाप साफ साफ मुरली में कहता है 60 साल के बाद निवृत्ति लो। अभी हम क्या कहें, करो नौकरी धंधा, संभालो घर परिवार और ऊपर धर्मराज के डंडे खाओ, पद भ्रष्ट करो अपना। समझ की बात है ना। ये माया ऐसी है जिससे रहा नहीं जाता। कोई जो बाहरी रूप से नशा करते हैं ना, बाबा कहते वो नशा फिर भी ठीक है, छूट सकता है। ये संसार का नशा नहीं छूट सकता, ये इंसान को खत्म करके ही रुकता है। ये नहीं छूट सकता, कभी नहीं छूट सकता। इसके लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है। संसार का नशा छोड़ना कोई मामूली बात नहीं है। उसे महावीर कहा जाता है जो छूट पाता है संसार से। वीरों का वीर महावीर। समझ की बात है। तुम ना भी चाहो फिर भी तुम्हारा ध्यान जाएगा ही जाएगा। उससे सिद्ध होता है तुम अटके हो। समझ की बात है। इसलिए पुराने जमाने में 60 साल के बाद निवृत्त होकर आश्रम में चले जाते थे गुरु के पास, ताकि इससे छूटे। कभी कभार साल में एक दो बार आएंगे अपने बच्चों से, पोतरों से मिलने के लिए, या वो मिलने के लिए आएंगे आश्रम में, पर वो संसार में नहीं जाते थे। बहुत अच्छा कायदा था। अभी मायावी हो गया है, चकाचौंध संसार की रोशनी बढ़ गई है। माया ने फंसा दिया रोशनी में, बहुत कुछ दिखा दिया है। समझ की बातें हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी ये इतनी अनमोल जीवन संसार करने के लिए नहीं है। हाँ संसार करना ही चाहते हो ना, सतयुग में चलो, बहुत बड़ा संसार देते हैं, जितना चाहे करो। जिस संसार की कोई कीमत नहीं है यहाँ पर, वो संसार करने के पीछे तुम कहाँ लगे हो। वो अभी कुछ दिनों में गिरने वाला है, समाप्त होने वाला है, उसके पीछे तुम कहाँ लगे हो। समझ की बातें हैं। देखिए जिन बच्चों को संसार से निकला नहीं जा रहा है, बाबा कहते उनके लिए विधि दे रहे हैं। वो बच्चे हैं ना, एक कमरे में बंद रहे और बस मुरली पढ़ना, सुनना भी नहीं है, पढ़ना और योग। उनका भोजन उनको उनके समय पर मिल जाएगा और शरीर को जो आवश्यक है उतनी रेस्ट, नींद, ये करते रहे। ये तब तक करें जब तक तुम संसार को भूलते नहीं। संसार से निवृत्ति हो जाएगी। उसके बीच में तुमने एक दिन के लिए भी संसार देखा, माया फिर पकड़ लेगी। समझ की बात, फिर पकड़ लेगी माया। बाबा के हिसाब से अंतिम विधि है, जो करना चाहे करे, बाकी सब मुबारक हो तुम्हें। तो अपना भला करो, अपना भला करने के लिए और अपना भला करके दूसरों का भला करने के लिए यह जीवन मिली है। जो अपना भला कर सकता है, किया है जिसने, वही दूसरों का कर सकता है, करेगा। निवृत्ति लो, वृत्ति अटकी है संसार में, इसलिए संसार की वृत्ति से निवृत्ति लेनी है और वृत्ति को बाप में लगाना है। समझ के बाद अंदर में संसार को चलाने वाली जो शक्ति बैठी है ना तुम्हारे अंदर, जो ऊर्जा बैठी है, जो तुम्हें नचा रही है, उसे पसंद नहीं आएगा ये शेड्यूल जो बाबा ने दिया है, ये विधि पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उसे ये करना ही है, उसे इतनी मुरली पढ़ना, इतना योग करना पसंद नहीं आएगा। शायद दो तीन दिन के बाद वो अजीब रिएक्शन दे, हो सकता है, क्योंकि उसके निकलने का टाइम आया है अंदर से। पर तुम शांत रहो, तुम ये करते रहो, समाप्त हो जाएगी अंदर की शक्ति, अशुद्ध शक्ति जिसने तुम्हें संसार में फंसा के रखा है, अटका के रखा है। बाबा कहते देखो, वरना अंत में बुरी गति होगी, क्योंकि वो तुम्हें चला रही है, वो तुम नहीं जानते, संसार तुम्हें चला रहा है या तुम नहीं जानते हो। संसार माना ऐसे नहीं कि सिर्फ बूढ़े हैं तो वही शरीर से वही संसार चला रहे, आजकल बच्चे भी संसार चलाते हैं, बच्चे भी फंसे हैं छोटे छोटे, मेरा मेरा, समझ की बात है, जिसके बिना तुम्हें रहा नहीं जाता वो तुम्हारा संसार है, समझ की बात। एक बाप छोड़ के, निराकार बाप, उसकी याद छोड़ के, फिर तो बाप संसार बन गया, संसार शुद्ध हो गया, अगर बाप को याद करेंगे तो, बाप के बिना रहा ना जाए, ऐसे कोई है नहीं दुनिया में। बाकी जो भी है तुम्हारा, जिसके बिना रहा नहीं जाता वो संसार है, छोटे बच्चों का पढ़ाई, स्कूल कॉलेज, उनका संसार है, बड़ों का घर गृहस्थ, उनका संसार है, रहा नहीं जाता ना, जिसके बिना रहा नहीं जाता, तुम्हें फंसाया गया है वहां पर, समझ के बाद। किसी को ज्ञान में आकर सेवा किए बिना रहा नहीं जाता, कहेंगे बाबा की सेवा कर रहे हैं, हाँ बाबा की सेवा कर रहे हैं, पर तुम्हें रहा नहीं जाता, तुम्हारी आदत बन चुकी है वो सेवा, और बाप ने तुम्हें सेवा के लिए नहीं बुलाया है। यह ज्ञान में कहीं लिखा है क्या कि मीठे बच्चे तुम्हारा धंधा है सेवा करना, ये लिखा हुआ है क्या कहीं पर? बाप तो लिखता है, कहता है साफ साफ कि तुम्हारा धंधा है आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करना, बाकी छोड़ दो सारी चीजें। यही करने के लिए, बना संसार से निवृत्त होने के लिए लोग छुट्टी लेके अलग अलग सत्संगों में जाते हैं, एक चेंज के लिए कि संसार से थोड़ा मुक्त हो जाएंगे, थोड़े दिनों के लिए, 15 दिन, 1 मास। बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हें परमानेंट मुक्त करने आया हूं पुराने संसार से, समझ की बात है। तुम्हारे अंदर एक शक्ति होगी जो कहेगी कि नहीं नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, और तुम्हें अटका के रखेगी, ध्यान में रखना, तुम्हें फंसा के रखेगी। तुम्हारे पहले भी संसार था ये, तुम्हारे बाद भी रहेगा, ध्यान में रखना। तुम्हारे होने से संसार नहीं है, समझ की बात है। तुम अभी तुम्हारे अगली यात्रा के बारे में सोचो, ये बहुत किया तुमने, तुम्हें इमोशनल करने बहुत आएंगे अटकाने के लिए, समझ की बात है। बच्चे ध्यान रखो अपना। प्रश्न है, ब्राह्मण बनने के बाद भी वैल्यूएबल जीवन बनने का आधार क्या है? उत्तर है, वाचा और कर्मणा सेवा। जो वाचा या कर्मणा सेवा नहीं करते हैं उनके जीवन की कोई वैल्यू नहीं। सेवा से सबकी आशीर्वाद मिलती है। जो ईश्वरीय सेवा नहीं करते वह अपना टाइम एनर्जी सब वेस्ट करते हैं, उनका पद कम हो जाता है। बाबा कहते हैं वाचा और कर्मणा सेवा करनी है, अगर नहीं करते तो उनके जीवन की कोई वैल्यू नहीं। बाबा कहते करनी चाहिए सेवा, ब्राह्मण बने हो ना तो सेवा करनी चाहिए। सेवा से सबकी आशीर्वाद मिलती है, लेकिन ध्यान रखना सेवा करते करते तुमसे किसी को दुख ना मिले, वाचा से या कर्मणा से कोई दुखी ना हो। अगर दुखी हुआ तो फिर वो सेवा उसका फल आधा हो जाएगा। बड़ा ध्यान रखना होता है सेवा में। बहुत बच्चे सेवा तो करते हैं लेकिन अनकॉन्शियसली बहुतों को दुखी करते हैं, उन्हें भी पता नहीं चलता कि उनके बोल से कितने दुखी हुए, उनके कर्म से कितने दुखी हुए, और फल आधा हो जाता है, समझ की बात है। इसलिए सेवा में वाचा का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कर्मणा सेवा में। वैसे वाचा सेवा में भी ध्यान रखना पड़ता है पर कर्मणा सेवा में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी मेरे हिसाब से इसके कारण तुम किसी का दिल दुखा देते हो, क्योंकि तुम्हारा अपना हिसाब है, तुम्हारा अपना तरीका है। बाबा कहते ऐसे मत करो, जैसे तुम्हारा तरीका है वैसे दूसरों का भी तरीका है, जैसे तुम तुम्हारे तरीके को सम्मान करते हो वैसे दूसरों के तरीके को भी सम्मान करना सीखो। क्योंकि यह जगत सिर्फ तुमसे नहीं चलता, दूसरों का भी उतना ही हिस्सा है जगत चलाने में। बाबा कभी अपना तरीका नहीं चलाता, तो बच्चे तुम अपना तरीका क्यों चलाते हो, समझ की बात है। हाँ कभी कभी हो सकता है कि तुम्हारे तरीके से सब कार्य चले, पर कभी कभी यह भी हो सकता है कि तुम्हारा तरीका बिल्कुल इस्तेमाल ना किया जाए। तो ध्यान देना, सेवा तो बहुत अच्छी करते हैं सभी बच्चे, बस वाचा का ध्यान देना सेवाओं में, वरना तुम झट से कुछ बोल देते हो। तुम गाली तो नहीं दोगे, गारंटी है, ज्ञान में चल रहे हो, पर तुम ऐसे बोल बोलते हो जिससे दूसरे दुखी हो जाते हैं। बाबा कहते ऐसे मत करो, कमा रहे हो साथ साथ गवाओ नहीं, सहन करना सीखो, सहन शक्ति को बढ़ाओ, समझ की बात है। वरना तुम्हारी सहन शक्ति कम होगी और तुम बोल दोगे और किया हुआ सब व्यर्थ चला जाएगा, तो क्या पाया, सब व्यर्थ गवाया, समझ की बात है। तो सेवा से सबकी आशीर्वाद मिलती है। जो ईश्वरीय सेवा नहीं करते वह अपना टाइम एनर्जी सब वेस्ट करते हैं। उनका पद कम हो जाता है। बाबा कहते हैं टाइम और एनर्जी को वेस्ट नहीं करो, समझ की बात है, सेवा करते रहो जो भी हो तुमसे, पर ऐसे नहीं करो कि सेवा के चक्कर में स्थिति भूल जाओ और सेवा में ही लग जाओ। बच्चे ध्यान देना इस बात पर। गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह महिमा किसकी है, भारतवासी मनुष्य नहीं जानते। हो तुम भी मनुष्य परंतु तुम अब जान गए हो यह किसकी महिमा है। उस मात पिता द्वारा तुम विष्णुपुरी की राजाई ले रहे हो। ऊपर में है मात पिता, शिवलिंग की विद्वान आदि पूजा नहीं करने देते हैं क्योंकि वह उल्टी बात समझते हैं। वास्तव में शिवलिंग की पूजा जब करते हैं तो उनको मात पिता नहीं समझते हैं। लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे तो उनको मात पिता कहेंगे क्योंकि दोनों हैं। पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ भी समझते नहीं कि हम किसकी पूजा करते हैं। त्वमेव माताश्च पिता कौन है, जहाँ दो देखते हैं तो उनके आगे महिमा गाते हैं। परंतु लक्ष्मी नारायण तो न मात पिता है, न खिवैया है, न ज्ञान सागर पतित पावन है। तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो पतित पावन निराकार परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। त्वमेव माताश्च पिता, यह महिमा साकार की हो नहीं सकती। न लौकिक मात पिता के लिए यह गाते हैं, उस लौकिक माँ बाप से तो अल्पकाल का कागविष्ठा के समान सुख मिलता है। द्वापर कलयुग में है दुख, अभी तुम बाप द्वारा समझदार बने हो। किसको भी समझाना बहुत सहज है। त्रिमूर्ति चित्र ले जाओ, ऊपर में है शिव, यह है त्वमेव माताश्च पिता, जो ब्रह्मा द्वारा हमको विष्णुपुरी का राज्य देते हैं। ब्रह्मा द्वारा हमको सहज राजयोग सिखला रहे हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। विष्णुपुरी कैसे और किसने स्थापन की यह कोई जानते नहीं। बच्चे राजाओं का राजा बनना चाहते हो तो यहाँ का भिखारियों का भिखारीपन संसार का छोड़ दो। तुम ये कहोगे कि हम संसार भी करेंगे और राजाओं का राजा बनेंगे, बाबा कहते ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, समझ की बात है। पार्ट टाइम कितना भी कॉलेज अटेंड करो मेरिट में नहीं आ सकते, फर्स्ट क्लास में नहीं आ सकते, नंबर वन में नहीं आ सकते। ध्यान देना, नंबर वन में आना है तो फुल टाइम स्कूल कॉलेज अटेंड करना पड़ता है। नंबर वन में आना चाहते हो तो राजाओं का राजा बनना है तो यहाँ का भिखारियों का भिखारीपन छोड़ दो, संसार का, समझ की बात है। वरना मर्जी तुम्हारी, तुम जो चाहते हो तुम करो, समझ की बात है। ऐसे कोई है शिष्य उदाहरण में बता सकते हैं बच्चे, दुनियावी महात्माओं के शिष्य जिसने संसार में रहकर अपने गुरु के पास नंबर वन पद पाया हो? है कोई शिष्य? एक भी नहीं मिलेगा। ऐसा कोई महात्मा है, पुण्यात्मा है, संत आत्मा है जिसने खुद ने संसार में रहकर मना संसार चलाते चलाते नंबर वन पाया है, पूरा संसार बुद्धि से भूला है, तब अपने क्षेत्र में जहाँ निमित्त बनाया बाप ने वहाँ नंबर वन पाया है। राजाओं का राजा बनने के लिए संसार छोड़ना पड़ेगा, कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। त्याग के बिना कभी फल नहीं मिलता, ध्यान में रखना। त्याग के बाद तपस्या होती है और तपस्या के बाद फल मिलता है। बिना त्याग और बिना तपस्या के फल नहीं मिलेगा। तुम ये नहीं सोचो कि ऐसे ही तुम राजाओं के राजा बन जाओगे, पॉसिबल नहीं है। ब्रह्मा को भी सब छोड़ना पड़ा, ध्यान में रखना। बाप तो कहता है बच्चों के लिए, गृहस्थ व्यवहार संभालते, बच्चे दुखी ना हो इसलिए बाप कहता है, पर कितना संभालोगे, कहाँ तक संभालोगे? कुछ मिला है क्या संभाल कर दुख के अलावा? तो बच्चे, राजाओं का राजा बनना चाहते हो तो पूरा समर्पण करो। पूरा समर्पण नहीं है जिनका, वो प्रजा में आएंगे, कम पद पाएंगे, पद की आशा नहीं करना। तुम समर्पण नहीं करना चाहते और आशा क्या है, अष्टरत्न बन जाए, 108 में आ जाए। बाबा कहते ऐसे थोड़ी है। फिर ब्रह्मा को नहीं कहते संसार में रहकर या फिर अपना जवाहरी का बिजनेस संभाल कर, ज्वेलरी का बिजनेस संभाल कर तुम ये सब करो। समझ की बात है, संसार से निवृत्ति लेनी ही पड़ेगी। बच्चे समझे इस बात को। बच्चे तुम्हें लगता है पार्ट टाइम बाप जो सिखा रहा है उससे तुम नंबर वन में जा सकते हो? बाप जब फुल टाइम सिखाएगा, फुल टाइम बाप के साथ चलोगे, तभी नंबर वन में जा सकते हो। समझ की बात है, मर्जी तुम्हारी है, तुम क्या चाहते हो, कैसे पद चाहते हो, तुम मालिक हो। बस मैंने बताया, राजाओं का राजा बनना है तो सब भूलना पड़ेगा, बस एक बाप को याद रखना पड़ेगा, ज्ञान और बाप, बस फिर बनोगे, वरना तुम्हारी मर्जी। जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं, विष्णुपुरी कैसे और किसने स्थापन की यह कोई जानते नहीं। कोई ने तो स्थापन की होगी, बाप का परिचय मिलता है तो बाप से बर्थ राइट, ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार जरूर चाहिए। बाप का जन्म सिद्ध अधिकार है विष्णुपुरी, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी पद प्राप्त कराते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। समझाने का तरीका बहुत अच्छा चाहिए, जो किसकी बुद्धि में बैठे। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर तुम बहुत अच्छा ज्ञान दे सकते हो। लक्ष्मी नारायण को जरूर 84 जन्म लेने पड़ते हैं, यह नई दुनिया के नंबर वन मनुष्य हैं। गायन भी है, परमपिता परमात्मा से 21 पीढ़ी राज्य भाग्य मिलता है, वह भी क्लियर कर दिखाया हुआ है। कहा भी शादी पर व किसके निमंत्रण पर जाना होता है तो वह तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, परंतु बाबा को याद ही नहीं करते हैं तो मदद ही क्या मिलेगी। कई हैं जिनमें ज्ञान योग कुछ भी नहीं है, फिर भी सेंटर संभालते हैं तो बाबा आकर मदद करते हैं। बाकी जो अपना कल्याण नहीं करते तो दूसरों का क्या करेंगे? जैसे गुरु लोग खुद ही मुक्ति नहीं पा सकते तो दूसरों को कैसे दे सकते? देखिए, कई बच्चे जिनके अंदर ज्ञान योग भी नहीं है, समझ की बात, भाव शुद्ध है इसलिए बाबा मदद करते हैं सेंटर संभालने में। पर बाबा कहते ऐसे भी नहीं कि सब कर रहे हो तो ज्ञान योग नहीं रखूं। समझ की बात है, कैसे पता चलेगा तुम्हारे अंदर ज्ञान योग है? तुम संगठन में आने के बाद, किसी से फोन पर बात करने के बाद, किसी से सामने बात करने के बाद, जो चर्चा तुम निकालते हो वो तुम में है। तुम कौन सी चर्चा निकालते हो तुम देखो। कोई बच्चे जो एक दूसरे को मिलेंगे, ओम शांति कहेंगे, कहेंगे आपकी आत्मिक स्थिति कैसे चल रही है, योग कैसे चल रहा है, कितना घंटा योग होता है आपका, कैसे स्थिति आपकी। ये नहीं पूछेंगे घर परिवार संसार कैसा है, भोजन में क्या बनाया, व्यवस्था क्या रखी है, ये संसारी। तुम्हारी वृत्ति कौन सी है कैसे पता चलेगा? कोई मिलने के बाद, किसी से मिलने के बाद जो तुम चर्चा करते हो वो तुम्हारी वृत्ति है। सामने वाला भल मिलेगा और संसार की चर्चा करेगा, कहेगा हमारे घर में ये वो, हमारा नौकरी धंधा, घर परिवार। तुम कहोगे ये तो कलयुग है, ये चलता ही रहेगा, इसे तुम देखो नहीं, तुम अपने आप को देखोगे। अपने आप को देखो, तुम आत्मा हो, ईश्वर की संतान हो, वो जो भी तुम्हारे संग में पार्ट बजा रहे हैं वो भी आत्माएं हैं। ये जन्म भर चलता रहेगा, तुम ईश्वर को याद करो, बाप को याद करो। इसका अर्थ है ये संसारी नहीं है, ये गृहस्थी नहीं है, ये सन्यासी है। सामने से संसार की बात हुई, फिर भी इन्होंने सन्यास की बात की, आत्मा परमात्मा की बात की। समझ की बात है, वरना तुम बहुत बातों में खो जाते हो, जीवन समाप्त हो जाएगी। बाबा कहते इन बातों से दूर रहो और ये बातें करने वालों से भी दूर रहो। संसार की बातें, जो भी तुम्हारे आसपास संसार की बातें करते हैं उन्हें बड़े नम्रता से, बड़े प्रेम से, स्नेह से कहो ये बातें नहीं करो। बाप की श्रीमत है हमें कि ये बातें नहीं सुननी है, कोई भी संसार की बात हो। समझ की बात है, उसे भी तुम मुक्त कर दोगे संसार से, वरना अगर तुम सुनने बैठे वहां पर उसे और फंसा दोगे। उन्हें कहना ये सब झरमुई झगमुई की बातें सुनाने से अच्छा मुरली पढ़ो, बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करो, पास स्वरूप की ड्रिल घुमाओ। अज्ञानी लोग मना जो अब तक ज्ञान में नहीं आए, वैसे कोई अज्ञानी नहीं है, पर ये बाबा कहते हैं आपकी टर्म है ना दूसरों को कहने की, तो जो अज्ञानी है दुनियावी रूप से, वो भी जब संसार की बातें कहें उन्हें कहो कहाँ तक ये चर्चा करें, इससे अच्छा कुछ ईश्वर की बातें करें, ज्ञान योग की बातें करें, भल फिर वो भक्ति की भी बातें क्यों ना करें। समझ की बात है, उन्हें आत्मा का ज्ञान दो, परमात्मा का ज्ञान दो, क्या होगा, बुरा लगेगा, लगने दो, पर तुम निमित्त नहीं बनो उनको और संसार में फंसाने के लिए, उनके संग में संसार की चर्चा करके। समझ की बात है, उनको कहना क्या तुम्हारे हाथ में है, बोलो तुम जो जन्मे हो तुम्हारे हाथ में है, तुम जो मरने वाले हो तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे हाथ में है, और अब तक जो तुमने पढ़ाई लिखाई की, नौकरी धंधा किया, रिटायरमेंट ली, तुम्हारे हाथ में थी, तुम्हारे पति पत्नी माँ बाप बच्चे तुम्हारे हाथ में थे, कैसे बच्चे जन्म ले तुम्हारे परिवार में, कुछ नहीं ना। तो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसकी क्या चर्चा करना, और उसे जो सुधार सकता है परमात्मा, क्यों ना उसकी चर्चा करें। समझ की बात है, उसे भी सही राह पर लाओ, वरना ये रोना धोना समाप्त नहीं होगा संसार का। ज्ञान में आकर भी बच्चे रोते धोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, हमारा ये ठीक नहीं हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है, बाबा को लेटर लिखते रहते हैं, जैसे बाप मिला ही है ये सब ठीक करने के लिए। समझ की बात है, इस बात को बच्चे ध्यान में रखना। तुमने एक ट्रेन का टिकट भी मुझे कंफर्म कराने के लिए लेटर लिखा ना, तुम्हारे योग बल से ही तुम्हारा ट्रेन का टिकट कंफर्म कराऊंगा, मैं नहीं करूंगा, तुम्हारा ही योग बल समाप्त करूंगा मैं, तुम्हारे ट्रेन का एक टिकट कंफर्म कराने के लिए। मैं मुझसे कुछ नहीं करता हूं, ध्यान में रखना। तुम जितनी दुआएं मांगो, जितनी प्रार्थनाएं करो, वो सब तुम्हारे योग बल से ही तुम्हें दूंगा। मेरा पार्टी नहीं अपने से कुछ देने का ज्ञान के अलावा। समझ की बात है, इसलिए मांगो दुआएं करो, प्रार्थनाएं लिखो, लेटर, और समाप्त करो अपना योग बल। जिस योग बल से तुम्हें राजाई मिलने वाली है, उसे तुम ऐसे ही समाप्त कर रहे हो छोटी छोटी बातों में। समझ की बात है, तुम्हें निश्चय है ना बाप पर, निश्चय है तो वो देखेगा तुम्हें कैसे लेके जाना है आबू, कैसे टिकट कंफर्म करानी है, कब करानी है। समझ की बात है, पर तुम जिद करोगे ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, तुम संकल्प रखोगे और अपना योग बल नष्ट कर दोगे। मुबारक हो, जब भी तुम कोई इच्छा या संकल्प रखते हो तुम्हारा अपना योग बल नष्ट हो जाता है। तुम ध्यान से देखना बच्चे, वो संकल्प तो पूरा हो जाता है, पर संकल्प पूरा होने के बाद तुम्हारी स्थिति नीचे आती है। ध्यान से अभ्यास करना, स्थिति क्यों नीचे आई, क्योंकि जिस योग बल से तुम्हारी स्थिति ऊपर थी वो समाप्त हुआ थोड़ा बहुत, इसलिए स्थिति नीचे आई। इसलिए प्राप्ति के बाद स्थिति नीचे आती है। तुमने मांगा ना, इच्छा रखी ना, संकल्प रखा ना, प्राप्ति हुई, योग बल समाप्त, स्थिति नीचे। जैसे इस दुनिया में तुम कहीं जाते हो शॉपिंग करने, कोई चीज खरीदते हो, बड़ी खुशी होती है अपने क्रेडिट कार्ड से कोई चीज खरीद ली तुमने, बड़ी खुशी हुई, बड़े नाच रहे, ध्यान से देखना। पर जब बिल का मैसेज आता है ना, स्थिति नीचे चली जाती है, इतने पैसे खर्च हुए, फिर वो गुस्सा दूसरों पर निकालना शुरू करते हो, क्योंकि स्थिति नीचे गई धन के रूप से। वही बात है, बाबा कहते हैं इच्छा रखो और अपना योग बल समाप्त करो। मुबारक हो, मर्जी तुम्हारी, संकल्प रखो और अपना योग बल समाप्त करो और स्थिति को नीचे लाओ। सब कुछ कर रहे हो स्थिति बनाने के लिए, और जिस योग बल से तुम्हारी स्थिति बन रही है उसे कहीं भी खर्च कर रहे हो इच्छाओं में। छोटी छोटी बातें हैं इच्छाओं की, हम सोच रहे कल हम ऐसे करेंगे, रखी इच्छा, हम सोच रहे शाम को हम ये करेंगे वो बनाएंगे, रात को ये प्लान है, रखी इच्छा। पता है तुम्हें रात तक जिंदा रहोगे, माना तुम्हारा शरीर, जरूरत है इच्छा रखने की। और कहते हो जैसे प्रभु चलाए, जैसे बाबा चलाए, चलते नहीं हो, माया बैठी अंदर। इसलिए बाबा कहते हैं संकल्प नहीं रखो, इच्छा नहीं रखो। बाबा ने साफ साफ कहा है, इच्छा मात्रम अविद्या, तुम बड़े ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो, कहोगे इच्छा नहीं रखी, शुभ संकल्प रखा है। तुम्हें किसने कहा ये शुभ संकल्प है? किसने बताया तुम्हें? मैंने बताया क्या कि ये शुभ संकल्प है? तुम कहते हो कि मेरी ट्रेन की टिकट कंफर्म हो जाएगी, हम आबू पहुंच जाएंगे बाबा मिलन के लिए, ये शुभ संकल्प रखा है। किसने कहा? तुम्हें पता है तुम जिस ट्रेन का टिकट कंफर्म करना चाहते हो उसका एक्सीडेंट होने वाला है? कहोगे नहीं, फिर नहीं कंफर्म कराना, क्या चतुराई है। इसलिए तुम जानते हो शुभ संकल्प क्या होता है, पता है तुम्हें? वैसे देखा जाए तो शुभ संकल्प एक ही है, अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करना, ये हो जाए मुझसे, मैं अपने आप को आत्मा समझ के निराकार रूप में बाप को याद करूं, ये इच्छा रखो, ये सबसे बड़ा शुभ संकल्प है। इसे छोड़कर बाबा कहते मैं कोई गारंटी नहीं देता कि कोई शुभ संकल्प हो सकता है, पूरा पूरा ध्यान में रखना। इसलिए इच्छा नहीं रखना, समझ की बात है। तो बच्चे ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो। जैसे गुरु लोग खुद ही मुक्ति नहीं पा सकते तो दूसरों को कैसे दे सकते? बाप समझाते बहुत सहज है, एक त्रिमूर्ति का राज और नई दुनिया पुरानी दुनिया के चक्र का राज लिखा हुआ है। सर्विस करने वालों की बुद्धि में यह सब राज रहते हैं। कहा शादी आदि पर जाओ तो कोशिश करो तीर लगाने की, बिच्छू का मिसाल। तुम्हारा धंधा है सबका भला करना, परंतु जिसने अपना भला नहीं किया तो दूसरों का कैसे करेंगे? सर्विस तो बहुत है, कर्मणा सर्विस भी बहुतों को सुख देती है, सबकी आशीर्वाद मिलती है। जो न वाचा न कर्मणा सर्विस करते उनका क्या पद होगा? वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में तुम्हारा वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी हुआ ना। ईश्वरीय सर्विस आधा घंटा भी नहीं करते, ऐसे भी बहुत हैं। पद पाना नहीं है तो चाल ही ऐसी चलते रहते हैं, बहुत चलते चलते फिर गिर भी पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा हम गटर में गिर पड़े, चोट लग गई, उनको शर्म आना चाहिए। कोई मल्ल युद्ध में हार जाते हैं तो उनका मुंह काला हो जाता है। पिछाड़ी में जब ट्रांसफर होने का समय आएगा तो तुम सबको साक्षात्कार होगा कि हमारा क्या पद है, फिर पछताने से क्या होगा, समझेंगे कल्प कल्प यही गति होगी। कहते हैं शल तुमको ईश्वर मत दे, परंतु यह तो ईश्वर की मत पर भी नहीं चलते। जैसे कि प्रण किया है कि हम कभी श्रीमत पर नहीं चलेंगे, पढ़ते ही नहीं है, नहीं तो समझाना बहुत सहज है। कोई कोई बच्चे हैं जैसे उन्होंने शपथ ली है, प्रण किया है कि हम श्रीमत पर कभी नहीं चलेंगे, ऐसे बच्चे हैं। समझ की बात है, बाप साफ साफ श्रीमत देता है, निवृत्ति लो, मुक्ति लो। यहाँ जो मुक्त होंगे वही वहाँ जीवन मुक्ति भोगेंगे, पर बाबा कहते यहाँ मुक्ति हो जाओ, मना मुक्ति में जाओ, स्वयं मुक्ति बनो, यहाँ पर तुम खुद मुक्ति हो जाओ। यहाँ पर जब तुम खुद मुक्ति बनोगे तो दूसरों को मुक्ति दे पाओगे। मुक्ति होना बहुत आवश्यक है यहाँ पर, समझ की बातें। यहाँ भी अभी इस समय में जिनके पास बड़े बड़े महल माड़िया हैं, नौकर चाकर हैं, वो सबसे ज्यादा बंधन में है। समझ की बात है। कभी कभी वो बच्चे मुक्त रहना चाहते हैं, पर नौकर चाकर आकर कहेंगे, मालिक और क्या करें, मालिक और क्या सेवा करें, ये पूरी हुई, अभी और क्या करें, बंधे हुए हैं दिन भर में। बाबा कहते इससे अच्छा गरीब अच्छे, इतना कोई संसार है नहीं और न कोई नौकर चाकर है, खुद को ही सब करना है, बस खुद का थोड़ा बहुत किया और निवृत्ति पा ली। और जो बड़े हैं खुद का भी कर लेते हैं, वो तो हो गया, निवृत्ति पाई न पाई कि नौकर आया, और क्या सेवा है। मालिक नौकर के आगे, नौकर मालिक के आगे चक्र में फंसे हैं, निकलना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। जिनकी तरह वो उनके पीछे रहते हैं, और क्या सेवा। समझ की बात है, ना नौकर बैठेगा ना मालिक बैठने देगा, दोनों फंसे हुए हैं, बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं संसार में। समझ की बातें बाबा कहते हैं, छोड़ दो ये सारा गोरख धंधा, बाप की याद में स्थित हो जाओ, बाप की याद में बैठो, वरना ऐसा ना हो कि वहां नौकर बनना पड़े। बाप आया है राजा बनाने, महाराजा बनाने, पर बच्चे उन्होंने शपथ ली है, पता नहीं उनका शपथ विधि कहाँ और कब हुआ है, हमें भी नहीं बुलाया शपथ विधि पर कि हम श्रीमत पर कभी नहीं चलेंगे, ये शपथ ली है, प्रण लिया है, हमें बुलाते तो हम भी आते शपथ विधि में, दो तालियां बजाते, उनका वेन्यू क्या था, कहाँ किया, कैसे किया, पता नहीं। ऐसे बच्चे हैं कि हम कभी श्रीमत पर नहीं चलेंगे। बड़ा प्यार है बाबा को इन बच्चों से। ऐसे बच्चे जो बाप को कहते हैं कि कभी श्रीमत पर नहीं चलेंगे, इनको नूरे रतन का किताब देना चाहिए, इनको कहना चाहिए कि तुम श्रीमत पर नहीं चलोगे, ऐसे ही चलो, मैं तुम्हें महाराजा बनाऊंगा, बिल्कुल एक भी श्रीमत नहीं पालन करना तुम, मैं तुम्हें विश्व महाराजन बनाऊंगा। और क्या कहे इन्हें, ज्ञान में आए ही क्यों हो, किसने बुलाया तुम्हें, अगर ये सब करना है तुम क्यों अपना नुकसान कर रहे हो। इतना सुंदर संगम का समय है जो कभी वापस नहीं आएगा, ध्यान देना। ये जिसके बुद्धि में क्लिक हुआ ना कि यह संगम का समय है, ये कभी वापस नहीं आएगा, ये जिसने रियलाइज किया ना, वो कभी संसार में नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता। उसे पता चलेगा एक एक सेकंड कितना इंपॉर्टेंट है, उसे लगेगा कब ये थोड़ा बहुत शरीर को चलाने के कर्म पूरे करे और याद में बैठ जाए। उसकी दौड़ी पूरी याद की तरफ होगी, बाप की तरफ होगी पूरी दौड़ी। समझ की बात है। बाबा कहते हैं देखो ये भी भाग्यवान ही करेंगे, सभी के भाग्य में ये नहीं है कि सबसे निवृत्त होकर बाप की याद में बैठे। पद की बात है, बाप तो अंत तक समझाता रहेगा, समझने वाले समझ जाए, परंतु यहां तो ईश्वर की मत पर भी नहीं चलते। जैसे कि प्रण किया है कि हम कभी श्रीमत पर नहीं चलेंगे, पढ़ते ही नहीं है, नहीं तो समझाना बहुत सहज है। छोटे बच्चे भी चित्र लेकर बैठ समझाए, यह प्रजापिता ब्रह्मा है, जरूर बीके को ज्ञान देते होंगे। यह वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। 21 जन्मों की बात है, तुम्हें कोई कल्पना है? एक जन्म बाप कह रहा है त्याग दो संसार का और 21 जन्मों का वर्षा लो। ये बड़े बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, एक जन्म त्यागते हैं ना, वो बनने से पहले पढ़ाई भी वही की और बनने के बाद भी प्रोफेशन वही चल रहा है उनका, वही सेवा दे रहे हैं ना, पूरा जन्म त्याग दिया ना। बाबा कहते यहां 21 जन्मों की बात है, कल्पना है तुम्हें 21 जन्म क्या होते हैं सतयुग त्रेता के? संगम का एक जन्म, बाबा कहते कल्पना करके देखो, 21 जन्मों के भाग्य के लिए एक जन्म नहीं त्याग सकते, समझ की बात है। बाबा कहते किस तरीके से समझाऊं तुम्हें, कोई और तरीका भी नहीं समझाने का मेरे पास, इतनी बड़ी प्रारब्ध मिलने जा रही है, इतनी बड़ी प्राप्ति है और तुम हो कि एक जन्म को पकड़ के बैठे हो, एक संसार को जो दो कौड़ी का संसार नहीं है। गन्ने का रस निकल के बचा हुआ छिलका है, वो तुम्हारा संसार है, उसको पकड़ के बैठे हो। 21 जन्मों के भाग्य को तुम ऐसे ही गवा रहे हो एक संसार को पकड़कर, समझ की बात है। बच्चे देखो समझो, यह वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। बच्चे इतना भी समझाए तो भी कुर्बान जाए, नीचे लिखा हुआ है यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। यह जगत पिता जगत अम्बा है, यही जगत अम्बा फिर लक्ष्मी बनती है। अभी परमात्मा आकर 21 जन्मों का राज्य भाग्य देते हैं। यह है ज्ञान मार्ग, फिर भक्ति मार्ग में दीप माला पर लक्ष्मी से भीख मांगते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे कहाँ भी जाओ, जाकर समझाओ, हम यह पढ़े हैं, हमारा फर्ज है घर घर में पैगाम देना। यह त्रिमूर्ति क्या है, आओ तो हम आपको समझाएं। बाबा ने इनको बैठ 84 जन्मों का राज समझाया हुआ है। जैसे ब्रह्मा का दिन और रात, वैसे विष्णु का भी दिन और रात। बच्चे इस बात को समझो, अभी तुम्हारे दिन अच्छे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुमने 63 जन्मों में सिर्फ पुण्य ही किए हैं। ध्यान देना, बाप साथ है इसलिए सब ठीक ठाक है। 63 जन्मों के बहुत विकर्म रहे हुए हैं, उनको विनाश करने के लिए समय निकालो। ध्यान देना, इतने विकर्म हैं कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ का एक एक सेकंड वैल्यूएबल है। फिर अंत में कुछ रहेगा तो सजा खानी पड़ेगी, और एक बार सजा खाई कि पद भ्रष्ट हुआ, जिसके सारे 63 जन्मों के विकर्म विनाश हुए हैं उसी को ऊंच पद मिल सकता है। क्योंकि पहले तो क्लीनिंग करो, विकर्मों को विनाश करो। बैलेंस क्या है, शून्य, क्योंकि अभी विकर्म विनाश कर रहे हैं ना, जमा कुछ नहीं है ना, कमाया और समाप्त हुआ, अकाउंट में कुछ नहीं जमा, कर्जा ही इतना निकाल के रखा है कि जितनी पगार आती है सारी हफ्ते में चली जाती है ईएमआई में, जमा कुछ नहीं है। इसलिए पहले लोन क्लियर करो, ये मत समझना कि विकर्म विनाश हुए अभी पद मिलेगा। पद के लिए कौन जमा करेगा, योग का बल, तुम्हें कुछ और खरीदना है, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, उसके लिए पैसा कौन जमा करेगा नौकरी करके? इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे 8 घंटा मुझ बाप को याद करो। तुम ये नहीं समझना विकर्म विनाश हो गए माना तुम्हें ऊंच पद मिलेगा, नहीं, वो तो 0-0 हुआ है, सिर्फ कमाया और खाया। तुम्हारे जमा के आधार से तुम्हें पद मिलेगा। अभी बताओ जमा क्या है? विकर्म ही विनाश नहीं हुए, जमा कब करेंगे? बाबा कहते बहुत काम है संगम में तुम्हें, इसलिए संसार से निवृत्ति लो और इसमें बैठो, वरना इसे ठीक करते रहोगे और 21 जन्मों का वर्षा गवा दोगे। समझ की बात है बच्चों के लिए, मर्जी तुम्हारी है, जो चाहे करो। अभी भी अगर तुम्हें बीमारी आ रही है, मन तुम्हारा, बुद्धि, संस्कार ऊपर नीचे हो रहे, मना विकर्म है, ध्यान रखना। धन की समस्या आ रही है, विकर्म है। परिवार में अशांति है, तुम अशांत होते हो, विकर्म है। समाज में धोखा खा लेते हो, विकर्म है। तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है, विकर्म है। समझ की बात है। जिसके पास विकर्म नहीं रहे ना, वो दूसरों की उन्नति करता रहेगा। समझ की बात है, क्योंकि विकर्म समाप्त हुए हैं, खुद के लिए करने के लिए कुछ रहा नहीं। बच्चे ध्यान देना, 84 जन्मों की बात है। जैसे ब्रह्मा का दिन और रात, वैसे विष्णु का भी दिन और रात। बहुत सहज है समझाना, कोई का भी कल्याण करना है, यही धंधा तुमको करना है, सबको रास्ता बताने का। बस 2 रोटी मिले वह भी बहुत है, मनुष्य का पेट जास्ती नहीं खाता। अगर सेंसिबल है तो थोड़े रुपए में भी काम चल सकता है। समझ की बात है। आदि में दादियों ने घर बार संसार छोड़ा, तब तुम यहां बैठे हो ना, तुम तक ज्ञान पहुंचा। अभी कितने बाकी है जिन्हें ज्ञान देना है? 800 करोड़ से ऊपर आबादी है विश्व की। तुम्हें नहीं लगता कि सबको परिचय दे, सबको ज्ञान दे, सबका उद्धार करे? समझ की बात है। यहां तो कई ऐसे हैं जो थोड़ा ही ठीक न मिले तो भाग जाए, राजाई को भी ठोकर मार दे, बीच में बेगरी पार्ट चला, यह भी परीक्षा हुई थी, बहुत चले गए। यह सब शिव बाबा का क्या राज था, वह भी गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। कितने डर कर भाग गए, नहीं तो 2 रोटी खाने पर खर्चा बहुत कम लगता है। 2 रोटी खाना प्रभु के गुण गाना, अर्थात बाप और वरसे को याद करना। बाप को बहुत प्यार से याद करना है। समझ की बात है। बेगरी पार्ट चला या बाप ने चलाया, गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। बाप परीक्षा लेता है, देखता है कि अगर मैं ऐसे चलाऊं 15 दिन ढोड़ा छास चल सकते हो? बाप परीक्षा लेता है, वही रिजल्ट निकलती है, कौन बाप के लायक है, कौन विश्व सेवा के लायक है और कौन नहीं है। बाप कहे इस घड़ी ये छोड़ दो, छोड़ सकते हो? ये करना बंद करो, मान सकते हो बाप की बात? बाप कुछ नहीं बोलेगा उसके बाद। बच्चे कहेंगे बाबा ये नहीं हो पा रहा हमसे, हाँ कोई बात नहीं, चलते रहो। गया, बाबा कहते हैं तू तो काम से गया पूरा, थोड़ा समय रुक, तेरा नंबर लगा हुआ है, तू मेरी बात नहीं मान सकता ना, तू पूरा पूरा काम से गया, थोड़ा समय रुक बस, माया लेके जाएगी तुझे बरोबर। समझ की बात, बाप उसे वनक भी लगने नहीं देगा कि ऐसे कुछ होने जा रहा है, उसे पता भी चलने नहीं देगा, और ज्यादा प्यार से बात करेगा। बाबा जाने वाले से जरा प्यार से बात की जाती है ना, जाने का समय आया है ना, तो जो श्रीमत न मानने वाले हैं, बाबा बड़े प्यार से बात करता है उनसे, बड़े प्यार से, क्योंकि जाने वाले हैं, जाने वाले को दुखी कर कर नहीं भेजा जाता, दुख देकर नहीं भेजा जाता। समझ की बात है, इसलिए ध्यान देना बच्चे श्रीमत पर, श्रीमत में गड़बड़ी नहीं करना, जो बाप कहे करते रहना, श्रीमत पर पूरा पूरा चलते रहना। बहुत गए, उन्हें भी नहीं पता था, बाबा कहते ना खून से लिख के दिया लेटर कि हम कभी नहीं जाएंगे। बाबा कहते बात तो सही है कि तुम कभी नहीं जाएंगे, पर ये तभी हो सकता है जब तुम मेरी बात मानेंगे, वरना तुम कभी भी जाएंगे। समझ की बात है, इसलिए बाबा कहते श्रीमत पर चलो, भल श्रीमत को पालन करते तुम्हें दुख भी हो, वो दुख तुम्हें नहीं होता। ध्यान से चेक करना, तुम्हारे अंदर कोई और बैठा है जिसे श्रीमत पालन नहीं करनी है, उसे वो दुख होता है। भल श्रीमत पालन करने में तुम चिल्लाओ, दुखी हो जाओ, हर्जा नहीं, पर टिके रहोगे बाप के संग में, कितना भी दुख हो श्रीमत पालन करने में। कभी कहते हो ना हमारा मन नहीं होता, बाप ने ये कहा है पर ये करने का मन नहीं होता, तुम्हारा नहीं कोई और बैठा है उसका मन नहीं होता ये करने का, हमारा मन नहीं होता ये सब छोड़ने का, इनसे निकलने का, तुम्हारा नहीं कोई और बैठा है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें अटका के रख रहा है, फंसा के रख रहा है, ध्यान देना। इसलिए श्रीमत पर चलो और वर्षा पाओ। दो रोटी खाना, प्रभु के गुण गाना, अर्थात बाप और वर्षे को याद करना, बाप को बहुत प्यार से याद करना है। बाप कहते हैं मैं सेकंड में तुमको जीवन मुक्ति का राज समझाता हूँ, कलयुग में है जीवन बंद, जरूर मुक्ति जीवन मुक्ति दूसरे जन्म में मिली होगी, बाप ने संगम पर ही ज्ञान दिया है भी बरोबर सेकंड की बात, अच्छी तरह कोई सिर्फ समझाए, चित्र बहुत फाइन बने हुए हैं, त्रिमूर्ति तो कॉमन है, सिर्फ अर्थ नहीं समझते, यह भी समझते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, परंतु कब आकर यह कार्य करते हैं यह नहीं जानते। ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारिया होंगे, जानते हैं बाप से हमको वर्षा मिलता है, परंतु फिर भी सर्विस नहीं कर सकते, तो समझते हैं इन पर ग्रहण है, श्रीमत पर चलने के लिए ना कर देते हैं, जैसे यहाँ कोई पढ़ने नहीं आए हैं, ऐसे तो पिछाड़ी में एकदम चले जाएंगे। बाबा तो बहुत युक्तियाँ बताते हैं, देखिए अंत में बहुत ज्ञान छोड़ कर जाएंगे, श्रीमत पर चलना नहीं होगा। बाबा कहते फिर भी अभी कायदे कानून बहुत कम है, अंत में देखना बाप के कायदे, वो श्रीमत है ना कायदे मना, जो चल सकते हैं वही टिक सकते, वरना ऐसे ही बाबा कहते हैं छू हो जाएंगे सभी बच्चे, गायब हो जाएंगे, बड़ा मुश्किल होगा, निश्चय बुद्धि ही टिक पाएंगे श्रीमत पर। और बाबा कहते हैं मेरा पार्ट है, बच्चों की पूरी पूरी परीक्षा लेने का वचन ध्यान में रखना। हर रूप से पूरी पूरी परीक्षा लेने का मेरा पार्ट है, क्योंकि देखना तो पड़ेगा ना कौन लायक है कौन नहीं है। और परीक्षा होगी सिर्फ श्रीमत की, और किसी बात की नहीं होगी, श्रीमत की। बाप ऐसी श्रीमत देगा जिस पर तुम नहीं चल पाओगे, और अगर योग बल होगा तो तुम अपने योग बल से ताकत लगाकर उस पर चलने की पूरी कोशिश करोगे। वचन ध्यान में रखना, बाप श्रीमत ही ऐसे देगा कि जिस पर तुम बिल्कुल नहीं चल पाओगे, बिल्कुल नहीं चल पाओगे। योग बल होगा तो अपनी योग बल की शक्ति लगा के चलने का प्रयास करोगे और पास हो जाओगे। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन होगा, ध्यान में रखना, जो तुमने पढ़ा है उसमें से नहीं होगा। बड़ी बड़ी एग्जाम में ऐसे ही करते हैं ना, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन देते हैं ना, ढूंढो जवाब। बाबा कहते ये भी वही है, आउट ऑफ सिलेबस, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। विधि तो मैंने बताई है, इसलिए अभी से जो श्रीमत पर चलते हैं वो वहां चल पाएंगे, अभी से जो नहीं चल सकते वो नहीं चल पाएंगे। जिनके अंदर बहुत काल का संस्कार होगा श्रीमत पर चलने का, वही चल पाएंगे, वही टिक पाएंगे, वरना ऐसे ही गिर जाएंगे, नापास हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते देखो अंत में पिछाड़ी में कितने चले जाते हैं, मजा लेना, आनंद लेना। बाबा तो बहुत युक्तियां बताते हैं, बाबा से पूछते हैं, बाबा मैं शादी पर जाऊं, फलानी जगह जाऊं, अरे तुमको जहां तहां यह सर्विस ही जाकर करनी है, त्रिमूर्ति का चित्र लेकर इस पर ही समझाओ, त्रिमूर्ति मार्ग भी है, कोई भी अर्थ को नहीं जानते, यहाँ कई बच्चे हैं जो सेंटर पर आते रहते हैं, बाहर से कहते हैं हम पवित्र रहते हैं परंतु अंदर गंध करते रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी हूँ, बहुत विकार में गिरते रहते हैं, कुछ बतलाते नहीं, उनको यह पता ही नहीं पड़ता कि कितनी सजा मिलेगी। बाबा कहते हैं उनको बहुत सजा मिलेगी, महसूस करेंगे बरोबर हमने छिपाया था, इतना झूठ बोला था, इसलिए यह सजा मिल रही है। बाबा कहते हैं समय आएगा सबको अपनी चलन का साक्षात्कार कराऊंगा कि कितने पाप झूठ किए हैं, बहुत विकार में जाते रहते हैं, सेंटर पर भी आते रहते हैं, शास्त्रों में भी इंद्र सभा की बात है, यह एक की बात नहीं, बहुत ऐसे होते हैं, फिर जाकर दुश्मन बनते हैं, अबलाओं पर विघ्न डालते रहते हैं, बातें सब यहाँ की है, तुम सर्विस बहुत कर सकते हो, यह झाड़ का फर्स्ट क्लास चित्र है, बोलो सिर्फ नॉलेज सुनो, हम आपको यह भी नहीं कहते हैं निर्विकारी बनो, सिर्फ यहाँ आओ तो हम आपको अच्छी बातें सुनाएंगे, तुम शादी की खुशी में हो, हम आपको उनसे भी जास्ती खुशी का पारा चढ़ा सकते हैं हमेशा के लिए। बात करने की ताकत चाहिए, गोले का चित्र भी अच्छा है, कोई किताबों में भी यह गोला दिखाया है, सिर्फ आयु लंबी कर दी है, दिल में आना चाहिए, हम अपने मित्र संबंधियों का उद्धार करते हैं, एक दिन आएगा जो तुम चित्र लेकर जाए सबको समझाएंगे कि शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का राज्य दे रहे हैं, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है, बाकी देवताओं असुरों की लड़ाई नहीं लगी, यह तो यवन और कौरवों की है। उनका बॉम्ब छूटेगा और इनकी लड़ाई शुरू होगी। विनाश के बाद फिर स्वर्ग की स्थापना कितना सहज है, बोलो। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है, मन मना भव बस। बच्चे ध्यान में रखना, दोनों को याद करना है, बाप और वर्षा, शांति धाम और सुख धाम, श्रीमत है बाप की, दोनों को याद करना है। शांति धाम में भी चक्कर लगाओ और सुख धाम में भी चक्कर लगाओ, क्योंकि तुम्हें पता तो होना चाहिए कि तुम्हें चाहिए क्या, बनना क्या चाहते हो। लक्ष्मी नारायण बनना है ना, तो सुख धाम में भी तो चक्कर लगा, वर्षे को भी याद करो। समझ की बात है, मन मना भव बस। हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हम पैसे के भूखे नहीं हैं, पैसे तो अपने पास रखो। युक्ति युक्त बोलना चाहिए, आगे चलकर बहुत निकलेंगे, थोड़ी तुम्हारी भी वृद्धि हो जाए। कई है जो बाहर से बड़े अच्छे हैं, बड़े मीठे हैं, परंतु अंदर किचड़ा भरा हुआ है। यह अंदर बाहर बड़ा साफ चाहिए। सबके अंदर को जानने वाला शिव बाबा है। खुद कहते हैं जो जिस भावना से भक्ति करते हैं उनको उसका फल मिलता है। यह ड्रामा में नूंद है, तो जब बाप को पाया है तो वर्षा भी पूरा पाना चाहिए। वर्षा सर्विस से मिलता है, बाप तो फिर भी पुरुषार्थ कराएगा, ठंडा थोड़े ही छोड़ेगा। प्रोजेक्टर पर भी अच्छी तरह समझा सकते हैं, चक्र में कितना बड़ा ज्ञान समाया हुआ है। बड़े मंडप में बड़े बड़े चित्र रखने चाहिए, जितना बड़ा होगा उतना अच्छी तरह पढ़ सकेंगे। बहुत सहज है समझाना, यह नरक है, यह स्वर्ग है, यह 84 का चक्र फिरता है। बाप से बेहद का वर्षा संगम पर ही मिलता है। नाम ही है अति सहज राजयोग, अति सहज ज्ञान। ड्रामा अनुसार झाड़ को जानना है, चित्र तो बाबा ने बनवा दिए हैं। स्वर्ग में इन देवताओं का राज्य था, आर्य और अनार्य। आर्य अर्थात पारस बुद्धि, अनार्य अर्थात पत्थर बुद्धि। सच बताने वाले तुम हो, बहुत रहम दिल बनना है। कहाँ भी जाकर तुम सर्विस कर दिखाओ, कोई न कोई निकल पड़ेंगे जो अपना जीवन बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक नंबर, अंदर बाहर साफ रहना है, बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है, सच्ची दिल से सेवा करनी है। दो नंबर, अपना टाइम सफल करना है, सर्व की आशीर्वादे लेने के लिए वाचा व कर्मणा सेवा जरूर करनी है। रहम दिल बनना है, सबका कल्याण करने का धंधा करते रहना है। वरदान है निर्माणता की महानता द्वारा, सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले मास्टर सुखदाता भव। महानता की निशानी निर्माणता है, जितना निर्माण बनेंगे उतना सबके दिल में महान स्वतः बनेंगे। निर्माणता निरहंकारी सहज बनाती है, निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः प्राप्त कराता है। निर्माणता ही सबकी दुआएं प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माणता महिमा योग्य बना देती है। निर्माणता सबके मन में प्यार का स्थान बना देती है। वह बाप समान मास्टर सुखदाता बन जाते हैं। स्लोगन है, श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने के लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो। वापस निश्चय, बच्चे चेक करना तुम्हारा मुझ पर बाप पर कितना निश्चय है, तुम चेक करना। निश्चय बुद्धि विजयंती, ध्यान रखना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।